आज हम चर्चा करेंगे साधना के बारे में। साधना कैसे करना है, और वैसा एक्चुअली आज हम वैष्णवास के साथ डीलिंग्स कैसे करना उस पर डिस्कस करने वाले थे, बट मुझे लगा पहले हमें साधना के बारे में जानना चाहिए, इसलिए पहले साधना के बारे में आज पूरा चर्चा करते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे वैष्णव से कैसे डील करना उसके बारे में। सो ओम अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थाप्तं येन पुतले स्वयं रूपः प्रदामयेत् ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यविस्तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव एटिकेट में, वैष्णव सदाचार में अभी 2 दिन पूर्ण हो चुके हैं। पहले दिन हमने देखा कि मंदिर में प्रवेश करते हुए क्या करना चाहिए, और कैसे प्रणाम करना है, कैसे कीर्तन करना है, कैसे डांस करना है, कैसे वस्तुओं को हैंडल करना है, हाँ ये हमने देखा था। दूसरे दिन कल हमने डिस्कस किया था किचन प्रसादम से संबंधित, खाने पीने के बारे में, हाँ ये सब किचन के बारे में, किचन के सामान को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजें। और हाँ कल कीर्तन और डांस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे साधना, साधना के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधना और साध्य दो चीज होते हैं। साध्य यानी जिसको हमें प्राप्त करना है, साधना यानी उसको प्राप्त करने का मार्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को डिग्री प्राप्त करना है कॉलेज से, कॉलेज से डिग्री प्राप्त करना ये है साध्य, और वो डिग्री को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है कि उनको एडमिशन लेना, पहले उसके लिए क्वालिफिकेशंस एक्वायर करना, फिर एडमिशन लेना, एडमिशन लेने के बाद फिर पढ़ाई करना, एग्जाम देना, क्लासेस अटेंड करना, ये सब चीजें जो है ये साधना है। तो साध्य और साधना दो चीज होते हैं। तो भक्ति के मार्ग में साध्य और साधन दोनों एक ही है, साध्य और साधन में कोई भेद नहीं है। यानी हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। हमारा जीवन का परम उद्देश्य कोई स्वर्ग लोक जाकर स्वर्ग का सुख प्राप्त करना नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाकर भोग विलास करना, इंद्रिय भोग करना, भौतिक सुख को प्राप्त करना नहीं है। और हमारे जीवन का उद्देश्य कोई भी भौतिक सुख को या इवन स्वर्ग सुख को या इंद्र पद को, ब्रह्मा का पद को या मोक्ष को भी प्राप्त करना नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ कृष्ण प्रेम। कोई बहुत बड़ा प्रचारक बनना भी हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो यानी हमारा साध्य है शुद्ध भक्ति, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो साधना है वो भी शुद्ध भक्ति ही है। यानी साध्य और साधना दोनों एक ही है। शुद्ध भक्ति करने से ही शुद्ध भक्ति मिलेगी। सो कहने का मतलब हमारी साधना क्या है वो भी शुद्ध भक्ति है, मतलब एटलीस्ट शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का इच्छा रखना। तो फिर दोनों में फर्क क्या है भैया, दोनों अगर एक ही है तो इन कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, साध्य और साधना। प्रैक्टिसिंग स्टेज में और परफेक्ट स्टेज में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस ये है कि प्रैक्टिसिंग स्टेज में भक्ति कच्ची होती है, और परफेक्ट स्टेज में पक्की होती है। तो क्या फर्क है कच्ची पक्की का मतलब? हमारा अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज में हम अभी इतना शुद्ध नहीं है, हमारा जो इच्छा है भगवान की सेवा करने का ये अभी शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारे कलमश, हृदय में बहुत सारे कलमश अभी भी है, और इतना तीव्र नहीं है हमारी इच्छा। पर शुद्ध अवस्था में, सिद्ध मतलब परफेक्ट स्टेज में हमारी इच्छा प्योर होता है और इंटेंस होता है। लेकिन प्रैक्टिसिंग स्टेज में, यानी साधना करते हुए भी, हमारी इच्छा अल्टीमेटली उसी उसी के लिए होना चाहिए। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हमारे अंदर ये डिजायर इनकलकेट होना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा एस्पिरेशन प्योर होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो पैदा करने के लिए साधना होती है। साधना में क्या क्या आते हैं? भक्तों का संग पहला, फिर भगवान का नाम का जप और कीर्तन, सावधानी से मन हृदय लगाकर हृदय पूर्वक भागवतम का श्रवण करना, विग्रह की पूजा करना, तुलसी महारानी की पूजा करना, और इत्यादि जो अंग है, एकादशी का पालन करना वगैरह वगैरह, 64 अंग बताया गया मूर्ति का। ये 64 अंग, ये सब जो है, ये सबको पालन करना, ये हमारे साधना है। और इस साधना को फॉलो करने से हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, परफेक्ट स्टेज को प्राप्त। तो जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, विशेष करके श्रवण कीर्तन करना, ऑफकोर्स इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना, अभक्तों का संग को छोड़ना, मटेरियल एसोसिएशन को छोड़ना भी बहुत जरूरी हो गया, वो भी साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब डॉक्टर दवाई देते हैं, दो चीज देते हैं, एक दवाई देते हैं और एक परहेज भी होता है। दवाई लेना है और परहेज भी पालन करना, यानी जो नहीं करना उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए, जिन चीजों को नहीं खाना, जिन चीजों को हमें अवॉइड करना, वो भी बहुत जरूरी है। तो दवाई है हरि नाम भक्ति, और परहेज क्या है? अभक्तों का संग से दूर, मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति और भौतिक भौतिकतावादी लोगों का संग, हाँ, इन चीजों से दूर रहना भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना भक्ति करना। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी भक्ति को कल्टीवेट करना और मटेरियल एसोसिएशन से दूर रहना। तो ये है साधना। जब हम ये करेंगे, जब हम सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे भक्तों के संग में, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से इच्छा पैदा होता है। जब हम सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कैसे भक्ति किया, जब हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज ने कैसे भक्ति किया, नारद जी के बारे में सुनते हैं, युधिष्ठिर महाराज के बारे में सुनते हैं, अम्बरीश महाराज के बारे में सुनते हैं, गोपियों के बारे में सुनते हैं, उसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बारे में सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, आचार्यों के बारे में सुनते हैं, और अन्य शुद्ध भक्तों के बारे में सुनते हैं, भगवद गीता से सुनते हैं, भागवतम से सुनते हैं, चैतन्य चैतन्य इत्यादि, ये सब जब हम श्रवण करते हैं, तो वो सब सुन के, शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम सुनेंगे, हमारे हृदय के अंदर से भी एक इच्छा पैदा होता है कि हम भी उस प्रकार के शुद्ध भक्त बने, हमारे शुद्ध, हम भी वैसे भक्त भक्ति कल्टीवेट करें, ऐसे एक अंदर से इच्छा पैदा हो, और वो इच्छा ही शुद्ध भक्ति का शुरुआत है। वो इच्छा ही शुद्ध भक्ति का जो है बीज स्वरूप, और उस बीज से धीरे धीरे पौधा निकलकर धीरे धीरे वो बढ़ेगा और शुद्ध कृष्ण प्रेम का फल प्रदान करेगा। जब हम पहली बार श्रवण करते हैं, जब हम पहली बार सुनते हैं भक्ति के बारे में, पहली बार भक्तों का संग करते हैं, पहली बार प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से भक्ति के एक्टिविटीज में लगते हैं, तो हमारे अंदर से एक विश्वास, हमारे अंदर हृदय के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, एक इच्छा पैदा होता है। हाँ, वो इच्छा पैदा होती है कि भाई मुझे भी शुद्ध भक्ति करना है, मुझे भी वैसा बनना है। हाँ, ये भक्ति का प्रोसेस बहुत अच्छा है, मुझे भी उसको फॉलो करना है। इस प्रकार से हमारे अंदर से इच्छा पैदा होता है, और ये जो इच्छा पैदा होता है वही भक्ति का बीज है, वही बोलते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में, इस विश्व ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। कभी जानवर बनते हैं, कभी इंसान बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी असुर बनते हैं। कितने लाखों 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 करोड़ों असंख्य जन्म लेते हैं, इस तरह से भटकते रहते हैं। ऐसे असंख्य जीव है, उनमें से कोई भाग्यवान, जो भाग्यशाली जो जीव होता है, उसको गुरु और कृष्ण की कृपा से शुद्ध भक्ति का बीज मिलता है। और ये बीज कैसा होता है भैया? कोई अनार का बीज, या क्या बोलते उसको, कोई कद्दू का बीज या आम का गुठली टाइप का रहता है क्या वो बीज? वो बीज कैसे दिखता है, वो बीज क्या है? एक्चुअली वो बीज कुछ नहीं है, इट सिंपली मीन्स कि श्रद्धा, विश्वास और एक इच्छा बेसिकली, कि हम भी वैसा शुद्ध भक्त बने, हम भी शुद्ध भक्त बने। इस प्रकार का एक एस्पिरेशन हृदय के अंदर से जब पैदा होता है, हृदय के अंदर से इच्छा होती है, तो प्योर डिवोटी को देखकर, उनसे सुनकर, उनका संग करके, या बुक्स पढ़ के, किसी भी प्रकार से हमारे अंदर से भक्तों के संग के प्रभाव से एक इच्छा पैदा होता है, नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम प्योर डिवोटी। ये इच्छा ही बीज है, ये विश्वास, भागवतम और गीता पर जो विश्वास, जो भक्ति करने की इच्छा है, शुद्ध भक्त बनने की इच्छा है, यही है बीज जो हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता है। और वो बीज को हमें हृदय में आरोपित करना, हृदय रूपी खेत में उसको जोतना है, मतलब उसको बोना है। फिर बोने के बाद, फिर जैसे कोई बीज बोते हैं तो बीज में पानी डालना पड़ता है। हाँ, मतलब वहां पर खेत खेत पहले जोतते हैं, फिर जोतने के बाद उसके अंदर बीज डाल के फिर हवा पानी ये सब चाहिए उसको, और धीरे धीरे पौधा निकलता है, और उस पौधे में भी पानी डालते रहना, डेली खाद डालते रहना। हाँ, सूरज का रोशनी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये हवा और पानी, इसकी जो पौष्टिकता जो हम देते हैं वो है श्रवण और कीर्तन, जो हम डेली सुनते हैं, भागवतम भगवद गीता बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के भगवान का नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, वैष्णव की प्रचार करते हैं। ये सब जो है वो जल है, स्पेशली मुख्य रूप से श्रवण और कीर्तन। सुनना शुद्ध भक्तों से, प्रामाणिक वैष्णवों से, और भगवान का नाम का जप करना और कीर्तन, ये है जल। श्रवण कीर्तन जले कराए सेचन, यानी श्रवण और कीर्तन, ये जल डालना, इससे सेचन कर, सिंचाई कर। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, साधना। हाँ, जो एक्टिविटीज हम करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के, कृष्ण को खुश करने का, कृष्ण को प्रेम करने का इच्छा अभी भी थोड़ा वो छोटी मात्रा में हमारे हृदय में है, और जब परफेक्ट स्टेज को हम अटेन करते हैं तब भी वही इच्छा रहेगी कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण को प्रेम करने की। बस इतना ही फर्क है कि अभी इमेच्योर है, तब वो मेच्योर स्टेज में हो गया, बस इतना ही। बीज है, बाद में वृक्ष बन जाएगा, फल देगा, पर है तो दोनों सेम, बट ओनली उसके मेच्योरिटी लेवल में अंतर। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि साधना कैसे कैसे करना है। 64 अंग बताए गए भक्ति के, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए भक्ति के साधना के, और उन 64 अंग में से 5 अंगों को सबसे मुख्य बताया गया है। वो 5 अंग है, भक्तों का संग, हरिनाम, भागवत श्रवण करना, विग्रह अर्चन करना, और धाम वास करना। धाम वास करने का मतलब ये नहीं है कि हम सब अपने घर बार छोड़कर वृंदावन में जाकर सेटल हो जाए। हाँ, ये एक बहुत गलत ट्रेंड है जो आजकल इस्कॉन में अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी भी रिकमेंड नहीं किया ऐसा करने का। अगर प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं करना है तो यस, आप जाइए वृंदावन और वहां सेटल हो जाए, पर प्रभुपाद जी का मूड ऐसा था कि आप जहां हैं वहीं पे वृंदावन बनाओ, वृंदावन जाइए जरूर यात्रा में, साल में एक बार ऐसा भक्तों के संग में, मार्गदर्शन में जाइए और वहां वहां का सेवा सेवा करके संग लेकर फिर शुद्ध होकर वापस आए, ना कि वहां जाके सेटल होना। वहां जाके सेटल होने के लिए 6 गोस्वामियों जैसे योग्यता जिनको है वही वहां सेटल हो सकता है। बाबा जी ने कहा 6 गोस्वामी जैसा अगर आपके अंदर इतनी तीव्र वैराग्य और शुद्ध भक्ति है तो तब जाके उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अपने जहां रहे वहीं पे रहकर वहां सेवा करके वहां भक्ति करके। प्रभुपाद जी ने बोला जहां इस्कॉन मंदिर के मंदिर है वो ही वृंदावन ही है, वही वृंदावन। वृंदावन ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर स्थान का नाम, जहां भगवान की शुद्ध भक्ति होती है, जहां भक्ति के बारे में शिक्षा होता है, जहां भक्ति भक्तों का संग मिलता है, वही वृंदावन। तो प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन का हर मंदिर वृंदावन, इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। भक्ति भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को ऐसा पता चला कि उनका ऐसे कुछ बीमारी हो गया जिससे उनको बहुत जल्दी ही शरीर छोड़ के जाना पड़ा, मतलब ज्यादा समय नहीं बचा था। तो तब बहुत लोगों ने कहा कि आप जाइए वृंदावन जाके वहां वहां रहिए। प्रभुपाद जी ने बोले नहीं, अपने भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि इस्कॉन का हर मंदिर वृंदावन, इसलिए मैं अमेरिका में जो गीता नगरी फार्म है प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित किया गया, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए यही वृंदावन, वही रहे, यह है विश्वास, यह है श्रद्धा। तो धामवास, तो ये है 5 मुख्य अंग। और ऑफकोर्स प्रभुपाद जी ने बताया कि इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा जप, हरि 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 नाम का जप। इसलिए हम दीक्षा जब लेते हैं तो 2 प्रतिज्ञा लेते हैं। एक प्रतिज्ञा ये लेते हैं दीक्षा में कि 16 माला का जाप हरे कृष्ण महामंत्र का हर रोज करेंगे, हर रोज 16 माला का जाप करेंगे। और दूसरा प्रतिज्ञा लेते हैं कि 4 नियमों का पालन करेंगे। 4 नियम तो आप जानते ही, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं और नशा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा 99% आपकी भक्ति का प्रगति होती है आपकी चैंटिंग से, यानी आपका जप से। हाँ, हमारे जप की क्वालिटी जितने श्रद्धा पूर्वक, जितने हृदय पूर्वक मन लगाकर तीव्र इच्छा से आप जप करते हैं, अपराधों को 10 अपराधों को अवॉइड करते हुए ध्यान पूर्वक उसको सुनते हुए, कितने क्वालिटेटिवली आप अपने जाप करते हैं, उस पर आपका एडवांसमेंट 99%। प्रभुपाद जी ने कहा 99%, बाकी सब मिलाकर 1%, 99% अपना जाप। तो इसलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभुपाद जी ने बोला जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता है वो तो भक्त है ही नहीं। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला वो तो आसुरिक प्रवृत्ति में, हाँ, जो सुबह जल्दी नहीं जग सकता है इसका मतलब उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, वो तो भगवान के भक्त नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हाँ, भक्ति के सबसे मुख्य साधना यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, मंगल आरती करना, ये सब। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हाँ, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का जो समय है, हाँ, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय पर उससे पहले जगकर कोशिश करना चाहिए हमारा पूरे माला एक साथ में कंप्लीट करें प्रभुपाद जी ने, और ध्यान पूर्वक करें। और उसको ध्यान पूर्वक करने के लिए माला जप करने से पहले हमें चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम जो प्रेयर्स है, 8 श्लोक है शिक्षाष्टकम श्लोकों में, इन 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने पूरे वेदों का सार दे दिया, कितना कितने अच्छे प्रेयर्स हैं। हाँ, तो उन प्रेयर्स को हमें पाठ करना चाहिए शिक्षाष्टकम, और हो सके तो उसका मीनिंग भी हम बोल सकते हैं, एक एक श्लोक का, हाँ, एक एक दिन एक एक श्लोक का मीनिंग पढ़ सकते हैं। पर ये 8 श्लोकों को हमें कंठस्थ करना चाहिए और उसका उसका अर्थ जो है वो भी जानना चाहिए, और उसका अर्थ जानते हुए उस अर्थ पर मनन करना चाहिए, उसको ने कंटेम्पलेट करना चाहिए ना, शिक्षाष्टकम बोलते समय उसका जो अर्थ है उसके ऊपर हम ध्यान करते हुए, मनन करते हुए हाँ उन श्लोकों को उच्चारण करना। और जो 10 अपराध है, 10 अपराधों का लिस्ट है पद्म पुराण में लिखा गया है, इन 10 अपराधों को चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो उसको बोलना है। सारे वैष्णवों को प्रणाम करना है और हरिनाम की महिमा के बारे में थोड़ा सा हरिनाम को प्रार्थना करना है। ये सब करके फिर आप जब चैंटिंग शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आपका उसमें ध्यान अच्छे से, और भक्तों के संग में अगर हो सके तो, जिसको भी संभव है तो जरूर भक्तों के संग में बैठकर चैंटिंग करना जरूरी है। तो उससे क्या होता है, आपका चैंटिंग अच्छा से होता है। और भगवान से प्रार्थना करना, हरिनाम से प्रार्थना करना कि हमारा मन बहुत चंचल है, आपकी कृपा से ही हम आपकी सेवा कर पाएंगे। और हरिनाम जप का अर्थ क्या है, हाँ हे कृष्ण हे राधा रानी, आपकी सेवा में, आपकी प्रेममयी सेवा में हमें लगाए। इसने हम हमसे पूछा था कि भाई कि कैसे चैंटिंग करते समय जो शिक्षाष्टकम प्रेयर्स, मैंने कहा कि एक लेक्चर में मैंने कहा कि शिक्षाष्टकम के जो श्लोक हैं 8 श्लोक, उन उसके जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उस पर मनन, उस पर विचार करते हुए चैंटिंग। ये हिजोलस चंद्र मौली महाराज ने एक शिक्षाष्टकम के ऊपर सेमिनार दिया था, उसमें बताते हैं। हाँ और भी कई वैष्णव से बताया जाता है कि शिक्षाष्टकम के जो प्रेयर्स है उस प्रेयर्स के मीनिंग पर मनन करते हुए चैंटिंग करना, वो कैसे संभव है। हाँ यानी चैंटिंग करना मतलब यानी कृष्ण और राधा रानी को बुलाना, हरे कृष्ण यानी हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, आप उनको बुला रहे हो। पर आप उनको जब बुला रहे हो तो क्यों बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो आप कृष्ण राधे बोलते हैं, हाँ ठीक है भैया क्या क्या चाहिए आपको, भगवान आकर बोलेंगे क्या चाहिए। तो फिर वो जो है वो ये शिक्षाष्टकम प्रेयर्स मिलता है कि हाँ आप चैंटिंग करते समय हे कृष्ण हे राधे, आपका संकीर्तन का परम विजय, हे कृष्ण हे राधे हे कृष्ण, आपका नाम में इतनी सारी शक्तियां हैं लेकिन मेरे तनिक भी अनुराग नहीं है। हाँ इसका मतलब क्या है, हे कृष्ण हे राधे आपके संकीर्तन का परम विजय हो का मतलब क्या है, आपका संकीर्तन का विजय होने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, यही मेरा टॉप प्रायोरिटी है मेरी जिंदगी में कि आपका संकीर्तन का जय होना, आपका प्रचार बढ़ना, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये इसका मीनिंग ऐसा। उसी प्रकार से हे कृष्ण हे राधे मुझे तृण से भी अधम हाँ बनाओ, हाँ नम्रता हमारे अंदर आए, सहनशीलता, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो, दूसरों को सम्मान करो और अपने लिए मान सम्मान का अपेक्षा ना करो, हाँ ऐसा मुझे बनाइए, हे कृष्ण हे राधे हे कृष्ण, मेरे अंदर कोई धन एकत्र करने की, अनुयायी को इकट्ठा करने की, या किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या इवन मोक्ष की भी इच्छा मेरे अंदर ना रहे, सिर्फ मैं सिर्फ आपका जन्म जन्मांतर में आपकी सेवा ही करना चाहता हूँ। इस तरह से यानी जितने श्लोक हैं, हे राधे हे कृष्ण मैं इतना पतित हूं, इतना गिरा हुआ हूं, मुझे उठाकर आपके चरणों के नीचे धूल का कण बनाइए, कब वो दिन आएगा जब मेरे अंदर मेरे आंखों से अश्रु निकलेगा आपका नाम लेने से, कब वो दिन आएगा जब मेरा शरीर का बाल खड़े हो जाने लग जाएगा, कब वो दिन आएगा जब आपका नाम लेने से शरीर कांपने लगेगा, हाँ कंठ गदगद हो जाएगा, और इस तरह से वो दिन कब आएगा, कब वो होगा कि आपके विरह में मुझे सब कुछ शून्य लगे, हाँ कब वो भाव मेरे अंदर आएगा जैसा राधा रानी फील करती है, जैसे चेतन महाप्रभु ने बोला कि आप कुछ भी करें आप हमारे प्राणनाथ आप ही हो, ये भाव हमारे अंदर कब आएगा, ऐसा प्रार्थना करते हुए चैंटिंग। तो तब जो है भले वो भाव हमारे अंदर अभी है नहीं, हो सकता है अभी हम इमेच्योर स्टेज में हैं, हमारे अंदर वैसी फीलिंग नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट वैसा भाव को पैदा करने की इच्छा तो रख सकते हैं ना। हम करोड़पति तो बने नहीं, अरबपति खरबपति नहीं है, लेकिन बनने की इच्छा कोई तो कर सकते हैं ना, सपना तो देख सकते, सपना देखने में या इच्छा करने में कोई बुराई तो नहीं। उसी प्रकार से हमारे अंदर ये चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम में बताया, वो भाव हमारे अंदर फिलहाल नहीं है, लेकिन वो भाव को प्राप्त करने की इच्छा तो हम कर सकते हैं। तो वैसी इच्छा से हम प्रार्थना करेंगे, हे राधे हे कृष्ण, ये भाव जो शिक्षा अष्टकम में जो है, इस प्रकार का भाव हमें दे दो, कब हम शुद्ध भक्त बनेंगे आपका। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करते हुए चैंटिंग करना, यानी हार्ट उसमें कनेक्ट करना। तो जब हार्ट कनेक्ट करते इस तरह हरिनाम का आश्रय लेंगे ना, तो अपने आप जो अपना मन है कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि मन को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं। मन को कंट्रोल करना कृष्ण ही कर सकते, क्योंकि ऋषिकेश कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण ही मन को कंट्रोल कर पाएंगे, उनके अंदर ही क्षमता है, हमारे अंदर क्षमता नहीं। इसलिए हम जबरदस्ती मन को कंट्रोल करना आज कोशिश करेंगे, फिर भी उतना भागता रहे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? नाम से ही प्रार्थना करना कि हे राधे हे कृष्ण, आप हमारे मन को आपकी सेवा में लगाइए, आप हमारे मन को कहीं इधर उधर जाने मत दीजिए, हमें सिर्फ आपका चरणों का धूल का कण बनाए। आप इतने दयालु हैं कि नाम में इतनी सारी शक्तियां दी है, फिर भी मैं इतना दुर्भागा हूं कि मेरे अंदर कोई अनुराग तनिक भी नहीं है। हमें तृण से भी अधम बनाए। इस प्रकार से जो शिक्षा से प्रेयर्स बताए गए, उस प्रेयर्स के मुताबिक हम प्रार्थना करते हुए चैंटिंग करना, तब देखिए उस तरह का भाव ला के देखिए एक बार, फिर बाकी ऑटोमेटिकली भगवान ही आपका माइंड को कंट्रोल करेंगे। तो धीरे धीरे, ऑफकोर्स फिर भी अगर मन भटक जाता है तो चिंता मत करिए, मन अगर भटक जाता है फिर से जैसा पता चला कि हाँ मन इधर उधर चला गया, इमीडिएटली फिर से नाम का आश्रय लीजिए, फिर से नाम से प्रार्थना करिए, हे कृष्णा मेरा मन फिर जा रहा है, फिर आप कंट्रोल करिए, आपकी सेवा में रखें, फिर जाएगा, फिर कृष्ण से प्रार्थना करिए, फिर जाएगा, फिर कृष्ण से प्रार्थना करिए। और धीरज रखिए, तो इस तरह से नाम का आश्रय लेते हुए हमें चैंटिंग करना है, और एक तीव्र इच्छा को पैदा करना कि मुझे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, वह है कृष्ण भक्ति। इसको बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे बिजनेसमैन जो है तो होता है व्यापारी, वो सोचता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुनाफा चाहिए। बिजनेसमैन जो कुछ करता है सिर्फ एक ही उद्देश्य से करता है कि मुझे प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट कितना है? भले आपको बोलता है आपके लिए मैं बहुत सस्ते में दे रहा हूँ भैया, ये सामान बहुत सस्ते में आपको, आप मेरे दोस्त हो इसलिए बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं, ऐसा बोलता है, लेकिन डेफिनेटली कमाता है। जो कुछ करता है बिजनेसमैन, उसके पीछे एक ही मकसद रहता है कि पैसे कमाना, मुनाफा कमाना। भक्त को भी वैसा होना चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए हमें ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना कुछ चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए, शुद्ध कृष्ण प्रेम चाहिए। हाँ, इसको इस तरह का जो विश्वास, इस तरह का जो दृढ़ संकल्प जो अंदर से आता है ना, इसको बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। और इस प्रकार की व्यवसायात्मिका बुद्धि से जब हम नाम का आश्रय लेंगे, तब जाके कृष्ण की कृपा से हमारा मन कंट्रोल होगा तब। हाँ, यानी आपके अंदर जितना इच्छा है, मैकेनिकली चैंटिंग करने से एक मशीन जैसा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मशीन भी बोलता है, पर उसको कोई कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं। उसी प्रकार से हम जब माला करते हैं सिर्फ मैकेनिकली करेंगे तो हमारा उसका फल भी वैसे ही रहे, लेकिन अगर हम हृदय को लगाकर प्रार्थना करते हुए तीव्र इच्छा से करेंगे, भले मन हजार बार भटकेगा तो हजार बार वापस से कृष्ण का शेल्टर लेते हुए प्रार्थना करते हुए, बाकी सारे प्रायोरिटीज को छोड़ के एक ही प्रायोरिटी रखते हुए तीव्रता से, तब जाके जो है भगवान की कृपा से, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा परीक्षा भी लेंगे, तुरंत नहीं हो, लेकिन धीरज रखते हुए हजार बार क्या 10 लाख बार भी अगर मन भटकेगा तो हम फिर से कृष्ण का ही आश्रय लेते जाए, इतना भी समय लगे। तो इस तरह से उत्साह निश्चय और धैर्य, रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, और विश्वास भी होना चाहिए। तो तब हम जब जब करेंगे कृष्ण की कृपा करेंगे, तो कृष्ण के साथ हम डायरेक्टली बैठे हुए, ये ध्यान रखिए, हरि नाम भगवान से अलग नहीं। जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो कृष्ण स्वयं है, तो हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, जब करते समय दूसरा काम करना, मोबाइल देखना, चलते फिरते इधर उधर देखना, हाँ, दूसरे चीजों पर ध्यान देना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। बात करना, इधर उधर बात करना, और ध्यान पूर्वक सुनना जरूरी है। ओके, तो ये सब हुआ। हाँ, तो इसके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर माहौल। अगर मान लो बहुत शोर शराबा हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे जगह पर कोई लोग ऐसे भी हैं जो बस में बैठे बैठे चैंटिंग करते हैं, ट्रेन में चलते चलते चैंटिंग करते हैं, ऐसे चैंटिंग से कैसे अपने को, वहां माहौल है ही नहीं। बस में बैठे बैठे ट्रैवल करते करते, हाँ, तो इसलिए एक जगह बैठकर, सुनसान जगह पर या भक्तों के संग में बैठकर चैंटिंग करना सबसे अच्छा। पोस्चर भी इम्पोर्टेंट है, सीधा बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोते सोते, हाँ, जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए कोई कैसा बैठा हुआ है यहाँ कुर्सी पे, इस तरह से बैठकर, दीवार पे टिक कर। इसका मतलब क्या है? वो नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, वो कुर्सी का आश्रय ले रहा है या दीवार का आश्रय ले रहा है। हमें दीवार का आश्रय नहीं लेना है, कुर्सी का आश्रय नहीं लेना है, हमें नाम का आश्रय, इस तरह से बैठ के करना चाहिए, ना। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर विजिलेंस, बहुत ध्यान पूर्वक। मन इधर उधर जाता है, लेकिन मन को आप जबरदस्ती लाने से अच्छा है, जैसे ही थोड़ा सा समझ में आया मन भटक गया, तो आप बस नाम का आश्रय ले, तो मतलब फिर से नाम से प्रार्थना करो कि कृष्णा आप ही, आप जाने मत दीजिए हमारे मन को, आपके चरणों में लगाइए। तो मन क्यों इधर उधर जा रहा है, आप ध्यान करेंगे उस पर तो फिर और ज्यादा भागेगा। मन क्यों भाग रहे हैं, मन कैसे भाग गया, क्यों भाग गया, उस पर ध्यान देने से अच्छा नाम पे ध्यान देना चाहिए, नाम को प्रार्थना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सब ध्यान से सुनिए। नाम आप 16 माला जीवन भर अगर करना है, 16 माला अगर जीवन भर करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, अगर जीवन भर 16 माला एवरीडे करना है आपका, उसका सही बेनिफिट लेना है, तो आपको सबसे पहला माला कंप्लीट करना है दिन में, उसके बाद ही दूसरा कोई भी काम करना है। इसको हमेशा अंडरलाइन करके रखिए, कभी भी ऐसा मत करिए कि पहले ये 2 4 काम कर लेते हैं फिर बाद में बैठ के चैंटिंग करें। नहीं, 16 माला पूरा करने के बाद ही खाएंगे या सोएंगे या काम करेंगे या कुछ भी करेंगे, 16 माला पूरा करने से पहले कोई भी चीज दिन में नहीं करना। और उसके लिए आपको जल्दी जगना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जगेंगे 7 बजे, नहा धोएंगे, उसके बाद 10 काम आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं, कुछ इमरजेंसी आ जाता है, तो कब कैसे चैंटिंग करें? फिर 4 माला, 4 8 माला करेंगे, फिर काम करने चले जाएंगे, फिर वो काम करते 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 समय निकल जाएगा, बाद में आप करना बहुत मुश्किल है। अगर बाई चांस कर भी लिया तो मन लगेगा ही नहीं उसमें, दोपहर में शाम को बैठ के चैंटिंग करे कहाँ मन लगेगा। तो इसलिए व्रत आपको धारण करना है कि पूरा 16 माला कंप्लीट होने तक मैं कोई काम नहीं, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी हो, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी इमरजेंसी ये है कि हमारा शरीर किसी भी क्षण जा सकता है, हमारा प्राण कभी भी शरीर छोड़कर जा सकता है, ये सबसे बड़ा इमरजेंसी। हाँ, और इसलिए उससे पहले, प्राण निकलने से पहले कृष्ण का, कृष्ण की कृपा चाहिए, ये सबसे बड़ी इमरजेंसी, इससे बड़ा कोई इमरजेंसी। तो चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, भाई हमें नहीं चाहिए, भाड़ में जाने दो, हमें सबसे पहले माला कंप्लीट करना। तो इस तरह से आपको लेना है, और जब को कैसे भी खत्म करके कर दो, या ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से प्रेम पूर्वक करना है, स्पष्ट रूप से, हाँ। और कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, कुछ दो दो तीन नाम को, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे, कृष्ण 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 राम 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 हरे, इस तरह से 10-12 नाम तो, मतलब 16 नाम होते हैं, तो उसमें दो चार नाम तो मिस हो जाते हैं। इस तरह के जब से कृष्ण प्रसन्न है, मैंने आपको नाम को वैल्यू ही नहीं दे रहे, तो कौन सी चैट। तो इसलिए एक एक नाम स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। इसका मतलब यह नहीं कि बहुत लंबा लंबा हरे कृष्ण 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 हरे हरे इतना स्लो करेंगे तो भी आपको नींद आएगी और मन इधर उधर भागेगा। फास्ट भी करना है लेकिन स्पष्ट भी बोलना है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से। तो इस, और जपा भक्तों के संग में, जैसे मैंने बोला अर्ली मॉर्निंग करना, सूर्योदय से पहले, ये सबसे अच्छा समय, तभी उसका फल मिलेगा। और जोर जोर से, बहुत जोर से नहीं, मत करिए, बहुत ज्यादा जोर से करेंगे तो मतलब आपका मन मतलब बहुत ज्यादा विचलित होगा और बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो हल्का सा बोलना, हल्का सा आवाज निकालना ताकि खुद उसको सुन सके। और अच्छा रेस्ट लीजिए, आराम, झपकी लेते हुए, ये सबसे बड़ी खराबी चीज है। जब में तीन चीज होते हैं, तीन प्रकार के ऑब्स्टिकल्स होते हैं जब करने। एक है औदासीन्य, औदासीन्य का मतलब होता है उसको सीरियस न लेना, यानी उस पर ध्यान न देना। जब कर रहे हैं साथ में मोबाइल देख रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, साथ में मोबाइल देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये वो दूसरा, मतलब उस पर व्हाट डू कॉल, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट रहना। उसके बाद दूसरा है जाड्य, जाड्य यानी लेजीनेस, आलसी, हाँ, उबासी ले रहे हो चैटिंग करते समय, झपकी ले रहे हो, आलसी मतलब अरे यार कब खत्म होगा ये माला, बहुत बड़ा बोझ जैसा, उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है, आलसीपन है, नींद आ रही है, ये दूसरा। और तीसरा क्या है, विक्षेप, विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्शन। माला कर रहे हो, कोई कोई फोन आ गया बात कर, माला कर रहे हो, कोई आके कुछ बोलती, मतलब कुछ मन ध्यान भटक गया उससे, तो विक्षेप बोलते, डिस्ट्रैक्शन। ध्यान पूर्वक करा लेकिन बीच में कुछ आ गया, फिर वहां ध्यान चला गया, इसको बोलते हैं विक्षेप। ये तीनों चीजों को कैसे अवॉइड करना, भक्तों के संग में करना, माला करने से पहले नाम की महिमा को थोड़ा सुनना, प्रार्थना करना प्रॉपर समय पर करना, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में या जितना जल्दी हो सके उतना, और करने से पहले कुछ उसकी महिमा के बारे में श्रवण करना, प्रॉपर रेस्ट लेना रात में ताकि आपको नींद पूरी हुई और आप ध्यान पूर्वक चैंटिंग कर पाए, ऐसा। ठीक है, तो 10 अपराध जो है उनको अवॉइड करना है। 10 अपराध तो आप, मैं यहाँ अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा। 10 अपराधों, 10 अपराध क्या क्या है, सिर्फ आपको अपराध का लिस्ट ही नहीं बल्कि कौन सा नंबर अपराध कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 7वां अपराध कौन सा है, तो आपको बोलना चाहिए हाँ 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। पूछा जाए 3रा अपराध क्या है, बोलना चाहिए गुरु की अवज्ञा करना। 8वां अपराध कौन सा है, हाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप को वेदों में वर्णित शुभ कर्म, कर्म कांड के समान समझना। 4था अपराध कौन सा है, शास्त्रों की निंदा करना, वैदिक शास्त्र या उसके अनुगामी शास्त्रों की निंदा करना, ऐसा हर कौन सा नंबर अपराध कौन सा है ये भी आपको याद होना जरूरी है। और जाप करने से पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और पंच तत्व मंत्र का जाप करने से, उनकी प्रार्थना करने से, उनकी कृपा से अपराधों से, अपराधों का फल, अपराधों से हमें बचत मिलती है, अपराध क्षमा की जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसके बाद अपराध करें, अपराध फिर भी अवॉइड करना चाहिए। और ये चार नियम तो आप सब जानते ही हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा, इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए भक्तों को। और उसको अवॉइड करने के लिए और भी चीजों को अवॉइड करना साधना में क्या कहते हैं, मूवीज देखना, सिनेमा देखना, क्योंकि सिनेमा में ये चारों चीजें दिखाई जाती हैं। और भगवान सिनेमा जितनी देर देख रहे हैं भगवान स्मरण तो कर नहीं रहे, सिनेमा देखते समय फिर आपका मन वही जो दिखा रहे हैं उसको गंदी चीजें उसी में जा रहा है। तो इसलिए मूवीज देखना, भक्ति से संबंधित चीजों के अलावा, जैसे बहुत सारे आजकल फेसबुक में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तरह तरह के क्या क्या आते हैं वीडियोस, ये वो चीजें वो सब देखना, मैगजीन्स, ये सब चीजें जो बहुत ही चीजों को बहुत उस पे मन लगाना, या ऐसा कोई भी कार्य, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे पार्टियों में जाना, ऐसे लोगों से संग करना जो हमें भक्ति से मतलब हमारा मन को डिवेट करता, वैसे लोगों से संग करना है, वैसे लोगों से मिलना, वैसे एक्टिविटीज में जाना, जैसे कोई स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज हो गए, कोई दूसरे एक्टिविटीज हो गए जिसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई क्लब का एक्टिविटी हो गया, कुछ दूसरा एक्टिविटी हो गया जिसमें भक्ति से कोई लेन देन नहीं, तो यानी दैट मेक्स यू फॉरगेट कृष्णा फॉर सम टाइम। तो ऐसे एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स करियर से रिलेटेड है, जो मजबूरी है, जरूरी है, तो एक अलग बात है, क्योंकि उसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो जॉब है, करियर है, वो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी चीजें जो भगवान की सेवा में बाधा कर देते हैं उनको अवॉइड करना। भक्तों के संग में एज ऑफन एज पॉसिबल, जितना रेगुलरली हो सके भक्तों का संग करना। सत्संग का मतलब यह नहीं कि भक्तों के साथ बैठना, बल्कि उनको सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार भी करना। वो हम कल देखेंगे कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना। और भक्तों के पास जब जाते हैं तो बोलना तो है लेकिन सुनना चाहते हैं। कई लोग आते हैं बस उनका बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो इतना बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते, सुनते कुछ नहीं। तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम। हाँ, अपनी समस्या को बोलना भी जरूरी है, जो भी अपनी समस्या, प्रश्न, शंका जो भी है, लेकिन बोलना है, उसके बाद सुनना ज्यादा है भक्तों से हमें। ठीक है, अभक्तों का संग मैंने आपको बताया कि अभक्तों को दूर से दूर रहना, जो भक्त नहीं है, जो मेटेरियलिस्टिक पीपल है, उनके संग से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको। और उसमें भी दो प्रकार के, असत संग है, दो प्रकार के सबसे खतरनाक संग है, वो कौन से कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, और दूसरा जो स्त्री संगी, यानी जो स्त्रियों से, यानी यौन जीवन से जो ज्यादा अटैच, वो भी असत संग है। योषित संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, दो प्रकार के असाधु, यानी जो साधु नहीं है उसको असाधु, दो प्रकार के असाधु, एक योषित संग यानी स्त्रियों से बहुत ज्यादा अटैच, यानी सेक्स लाइफ से बहुत ज्यादा अटैच, और दूसरा है कृष्ण अभक्त, यानी कृष्ण का जो भक्त ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आग से भरा हुआ, आग आग से भरा हुआ पिंजरे में बंद होना ज्यादा श्रेयस्कर है अभक्तों के साथ रहने से, यानी अभक्तों के संग करने से। भले जलता हुआ आग के बीच में पिंजरे के अंदर बंद होना, हाँ, ये कम हानिकारक है अभक्तों के संग से, और उससे सारे अच्छे क्वालिटी सब खत्म होते हैं आपके अंदर, जो सत्यता, स्वच्छता, दया, बुद्धि, अल्टीमेटली आपकी भक्ति, ये सब खत्म हो जाते हैं भक्तों के संग से। तो ये हो गया चैंटिंग और एसोसिएशन। उसके बाद रीडिंग, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना, प्रभुपाद जी का बुक्स डेली पढ़ना जरूरी है। पहले छोटे छोटे बुक्स पढ़ना है, जैसे उपदेशामृत, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस लेस गिफ्ट, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इत्यादि छोटे बुक्स को हमें पढ़ना है। उसके बाद मीडियम बुक्स जैसे कि भक्त रसामृत सिंधु, उसके बाद भगवद गीता और उसके बाद भागवत और चैतन्य चरितामृत, इस तरह से क्रम में पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर बीच में आपने भगवद गीता उठा लिया, भागवत उठा लिया, तो कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस को फॉलो करना बेटर है। और प्रभुपाद जी के बुक्स के अलावा बाहर बाहर के कोई गीता प्रेस गोरखपुर का या कोई इधर का, कोई दूसरी संस्था का, इधर का उधर का, हाँ, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल स्पिरिचुअलिस्ट है ना, वो एक पाथ को फॉलो किया। आप थोड़ा इधर से ले, थोड़ा उधर से ले, ऐसा ज्ञान नहीं। हमें सरेंडर, हाँ, शरणागति और विश्वास एक जगह पर पूरा होना चाहिए। आप चार यूनिवर्सिटी में जाकर आप डिग्री नहीं कर सकते, एक ही यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हम प्रामाणिक संप्रदाय में प्रभुपाद जी से जुड़े हैं, तो इसलिए हमें दूसरे संस्थाएं, दूसरे गुरुस, हाँ, हमें उनको अनादर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूर उनको सुनने की भी जरूरत नहीं है, दूसरे बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सो हमें प्रभुपाद जी से और उनके अनुयायियों से सुनना है, और ध्यान पूर्वक एवरी डे मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि एज मच एज पॉसिबल अवॉइड ना करें। उसके लिए एक टिप है कि मैं जो करता हूँ, मैं हमेशा बुक्स को कैरी करता हूँ, कहीं कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो बुक्स को कैरी करता हूँ। थोड़ा समय मिलता है ट्रैवलिंग करते समय, जरूर पढ़ता हूँ, और सोने से पहले जरूर बिस्तर के पास बुक्स रख देता हूँ, तो सोने से पहले उसको उठा के इतनी देर आधा घंटा पढ़कर फिर सोता हूँ, तो इस तरह से डेली मेरी रीडिंग हो जाती है। या किसी को टाइम है तो सुबह सुबह ही पढ़ सकते और बेटर है। ओके, तो इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और जब प्रभुपाद जी के बुक्स हम पढ़ते हैं ना, देखिए, अब ये मत सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत सोचिए प्रभुपाद जी का बुक्स आप सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते, ऐसा नहीं। प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते समय क्या हो रहा है, आप प्रभुपाद जी का संग करते। प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना मतलब प्रभुपाद जी से संग करना, प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत वैष्णव से संग करना, उनकी सेवा करना। अब उनकी सेवा करें, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना मतलब प्रभुपाद जी की सेवा करना, प्रभुपाद जी का संग करना, तो उससे सबसे ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज कि आपको लग सकता है हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। ये हमारा अहंकार कहता है कि नहीं, ये तो ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, लेकिन उनका बुक्स पढ़ने से क्या, उनका संग मिल रहा है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ओके, और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है सेवा, ये बहुत जरूरी है। हर डिवोटी को कुछ ना कुछ सेवा करना है, क्योंकि सेवा के बिना जो आपने पढ़ाई किया, जो जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी सुन रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, वो पचेगा नहीं, वो सिर्फ थियोरेटिकल रह जाएगा, कान में जाएगा और दिमाग में रह जाएगा, नीचे उतर के हार्ट में, हृदय में नहीं जाता। जो हमने सुना पढ़ा उसको अगर हृदय में जाना है तो उसके लिए सेवा करना जरूरी, और सेवा वो नहीं है जो आप करना चाहते, सेवा उसको नहीं कहते जो आप करना चाहते, सेवा उसको कहते हैं जो वैष्णव आपसे चाहते हैं, जो वैष्णव वैष्णव लोगों के द्वारा, गुरु के द्वारा जो आज्ञा आती है वो है सेवा। हाँ, तो मुझे जो करना पसंद है, जो अच्छा लगता है, वो तो मेरी इच्छा, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूं, तो सेवा का मतलब जिसकी सेवा कर रहे हो उसको खुश करना, अपने कार्य से वैष्णव खुश होना चाहिए, दैट इज द पर्पज ऑफ सेवा। सिर्फ हम खुश हो रहे हैं लेकिन वैष्णव खुश नहीं हो रहे, सो दैट इज नॉट सेवा। सो तो भिन्न, ऑफकोर्स एट द सेम टाइम आपको जो आता है वो ही करना, जो आपको नहीं आता है वो करने से काम भी अच्छे से नहीं होगा, तो इसलिए ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं आता है, हाँ प्रभु जी ने बोला तो आपको करना है, आप आता नहीं तो कैसे करें। डिवोटीज भी वही बोलेंगे जो आप कर सकते, जो आपको आता है और जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आपके नेचर के हिसाब से जो फिट बैठता है। अगर किसी को खाना बनाना आता है तो उसको ये नहीं बोलेंगे भैया कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ऑफकोर्स कभी कभी अगर इमरजेंसी में कोई करने वाले नहीं है, जरूरत है तो बताते हैं, ठीक है भाई आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, प्लीज आप जाइए, तो तब हमें जाना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। अरे इतना धूप में कौन जाएगा, इतने बुक्स लेकर कौन जाएगा, एक एक व्यक्ति से मिलना है, घूमना है, वेरी हार्ड वर्क है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टफ है, हार्ड वर्क, घर घर जाना, ऑफिस टू ऑफिस जाना, दुकान दुकान जाना, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज प्लीजिंग टू श्री प्रभुपाद। लेकिन उसमें आपको करते करते उसमें जब मजा आने लगेगा तो फिर वो मुश्किल नहीं है। बल्कि मैं भी जैसा भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना या जो भी सेवा अपने नेचर के अनुसार जो जो हम कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेवा हमें गाइडेंस हमेशा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको लगता है हम ये सेवा करते हैं, लेकिन गाइडेंस लीजिए, वैष्णव से पूछिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेवा कितना करनी है। ये सेवा ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में एक बार आकर 1-2 घंटे की सेवा कर लिया बस हो गया हमारी सेवा। हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एवरी डे हो सके तो अपने घर पे भी कुछ कुछ सेवाएं किया जा सकती है। हाँ, तो हमें पूछना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे जीवन को ऐसे मोल्ड करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। यानी इसका मतलब क्या है, हमारी नौकरी, कौन सी नौकरी हम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से व्यापार करते हैं, ये सब चीजें भी इस आधार पर तय करना चाहिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सेवा और प्रचार में हम योगदान दे सकें। सेवा अपनी नौकरी को, अपनी इसको भी ऐसे चुनना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हम सेवा में भाग ले पाए। बहुत सारे डिवोटीज उनका करियर को भी ऐसा मोल्ड करते हैं, उनका करियर ऐसा बनाते हैं ताकि अल्टीमेटली मैक्सिमम सेवा हो सके। उसके बाद डेटी वर्शिप, भगवान की विग्रह अर्चना। ऑफ कोर्स जो गृहस्थ डिवोटी हैं, घर में विग्रह रखना चाहिए, लेकिन घर में विग्रह रखने से पहले बहुत सारे तैयारी करना जरूरी है। सपसे पहले आपको 16 माला का जाप, 4 नियमों का पालन ये करना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो डेटी वर्शिप नहीं कर सकते। और उसमें ऑफ कोर्स चाय, कॉफी, लहसुन प्याज, ये सब चीजों को टोटली अवॉइड करना। और आपको डेली भगवान के विग्रह की सेवा करने का आपके पास समय है, समय निकाल सकते हैं कि नहीं, ये सब देखना। अगर ये सब है तो फिर गुरु और वैष्णव के गाइडेंस में पूछ के उनके आज्ञा लेकर फिर भगवान के विग्रह को आप घर में लाकर पूजा कर सकते हैं। फिर उसका भी ऑल्टर कैसे सेटअप करना, भगवान के विग्रह को कैसे रखना, देवी देवताओं को भगवान के विग्रह के पास नहीं रख सकते, देवी देवताओं का को वैष्णव सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, देवी देवताओं का आराधना नहीं करते। या टेम्परेली, आइडियली क्या है, देवी देवताओं को रखना ही नहीं, उनको तो किसी और दूसरे स्थान पे मत, कोई टेम्पल में या किसी और को दे देना और सिर्फ कृष्ण को ही रखना। यह है स्टैंडर्ड जो प्रभुपाद जी ने सिखाया। पर घर वाले दूसरे लोग, अगर घर के दूसरे लोग नहीं मानते तो कम से कम उनको नीचे रख सकते, कृष्ण के नीचे। और साथ में गुरु परंपरा, 6 गोस्वामी, पंचतत्व, इन सब का रहना जरूरी। चाहे तो नरसिंह देव को भी रख सकते। तो इस प्रकार से कौन सा विग्रह लाना, कितने बड़े लाना, ये सब आप कंसल्ट करके, और उनकी सेवा कैसे, सेवा करने के लिए ऑफ कोर्स विग्रह की पूजा अच्छा है, लेकिन विग्रह की पूजा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मंदिर में सेवा, मंदिर में आकर सेवा करना ज्यादा जरूरी है। मंदिर में आकर सेवा करने से क्या होगा, तब प्रभुपाद जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। और वो सेवा यानी प्रचार और अन्य जो प्रचार से रिलेटेड ही प्रभुपाद जी के ज्यादा ज्यादा सेवा, ये सेवा ज्यादा जरूरी है विग्रह की पूजा से। आप घंटे घंटे 2-2 घंटे डेली विग्रह की पूजा कर रहे हैं लेकिन प्रचार में टाइम दो तो प्रभु जी टाइम नहीं है, तो फिर ऐसे विग्रह की पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रचार में। कलयुग में युग धर्म है नाम संकीर्तन, विग्रह की पूजा और अर्चना वो द्वापर युग में, द्वापर युग के लिए हिसाब से बताया गया, कलयुग के हिसाब से बोला हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन यानी सिर्फ कीर्तन नहीं, प्रचार भी हरिनाम संकीर्तन में ही आता है। जब कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो भक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या उनको भक्त वृक्ष का कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, इसको भी संकीर्तन ही कहते। संकीर्तन यानी भगवान की महिमा का वखान करके, तो यानी ये सब संकीर्तन ही, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात। विग्रह की पूजा अच्छा है, लेकिन उससे बहुत कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रचार, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। तो घर में जो भी बनाते हैं उसको भगवान को ऑफर करना जरूरी है, भोग लगाना जरूरी है। भोग कैसे लगाना, कल हमने चर्चा किया था। जब कभी बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो विग्रह की सेवा करने वाले कोई नहीं रहते, तो अगर हो सके तो किसी और वैष्णव के घर में उनको रख सकते हैं। अगर और भी हो सके तो उनको साथ में ले जा सकते, साथ में ले जाकर उनकी सेवा कर सकते, या अगर साथ में नहीं ले जा पाएंगे किसी और वैष्णव के घर में रखे, अगर वो भी संभव नहीं है तो उनको रेस्ट में रख सकते हैं, उनको सुला के रख सकते हैं, बच्चों को भी एंगेज कर सकते हैं उनकी सेवा। हाँ, तुलसी महारानी का भी प्रॉपर केयर होना चाहिए। उनको धूप पानी सूखने नहीं देना चाहिए, उनको अच्छा से सेवा करना है, और हर हर रोज तुलसी का पत्ता भगवान के चरण में ऑफर करना है। तुलसी का पत्ता सिर्फ कृष्ण को चढ़ता है, कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को, बलराम को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को, सालग्राम शिला को, विष्णु यानी विष्णु तत्व उनको ही चढ़ता है। राधा रानी को तुलसी ऑफर नहीं करते, राधा रानी को या गुरु को, हाँ उनके हाथ में देते हैं तुलसी, राधा रानी के हाथ में, या आपने क्या बोलते हैं उसको, गुरु के हाथ, ताकि वो कृष्ण के चरण में वो चढ़ाएंगे इस हिसाब से। लेकिन कृष्ण के अलावा किसी और के चरण में तुलसी नहीं देते। ठीक है, और जब भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ सुगंध देने वाले, खुशबू देने वाले फूल ही चढ़ाते हैं, जो खुशबूदार फूल नहीं है उनको नहीं चढ़ाते हैं। और एक वो आता है ना, लाल कलर का फूल होता है, जिसमें बीच में से डंडा निकलता है लंबा, क्या बोलते हैं उसको, पांच पंखड़ी होते हैं उसको, हाइबिस्कस बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाइबिस्कस बोलते हैं, जो देवी जी को चढ़ता है, लाल लाल रंग का होता है ना बड़ा, नहीं गुलमोहर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गुड़हल, गुड़हल का फूल, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल, इंग्लिश में हाइबिस्कस है, हिंदी नाम आप पता कर लीजिए। पांच पंखुड़ी रहते हैं बड़े बड़े, बीच में से उसका डंडा निकलता है, मतलब बीच में से उसका फूल वाला निकलता है, वो लंबा रहता है, जासून का फूल या जो भी, वो नहीं चढ़ता भगवान, वो देवी जी को चढ़ता है, जो खुशबू, बेसिकली जो खुशबू वाले फूल नहीं, वो नहीं चढ़ा। खुशबू वाले कई प्रकार के हैं, गेंदा, मोगरा, गुलाब, और भी कितने प्रकार के, नाग चंपा, चंपा, और क्या बोलते हैं उसको, रजनीगंधा, इस प्रकार के जो भी खुशबू वाले फूल ऑफर कर सकते हैं, तुलसी जरूर ऑफर कर सकते हैं। ओके, तपस्या, तपस्या कैसे करना, लेकिन से अभी कितना और बचा है, लगभग हो गया है थोड़ा सा। तपस्या में क्या होता है, थोड़ा थोड़ी तपस्या में हर डिवोटी को करना क्या, सबसे एक पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तपस्या क्या, सुबह जल्दी जगना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंगल आरती करना, ये जरूरी है। उसके बाद एकादशी का पालन, एकादशी का पालन करना, एकादशी का पालन करना भी कई प्रकार का होता है। बेस्ट एकादशी का व्रत होता है निर्जला, निर्जला यानी जल भी नहीं ग्रहण करके पूरा फुल फास्टिंग करके, ये सबसे बेस्ट। और साथ में ज्यादा से ज्यादा जप करना है। एकादशी का असली उद्देश्य क्या है? उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास भगवान के करीब वास कर, यानी ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना, भगवान का ध्यान करना, यानी कथा सुनना, चैंटिंग करना, कीर्तन करना, यह है एकादशी का उद्देश्य। यानी मन को भगवान पर केंद्रित कर। पर अगर शरीर कमजोर हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, तो तबीयत भी खराब नहीं, हाँ कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ माला भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ लेटे हैं कमजोरी के कारण, तो इस तरह का एकादशी उपवास से कोई मतलब नहीं। अगर आप कर सकते हैं, ये पूरा उपवास करते हुए चैंटिंग सब कुछ कर सकते हैं, बीमार नहीं पड़ते, हाँ ये बहुत जरूरी है। अपने क्षमता के अनुसार ही तपस्या करना, ओवर ओवर करने का नहीं बोलते शास्त्र। जितना आप कर सकते हो बिना स्वास्थ्य खराब किए हुए और भगवान को ध्यान करते हुए, उतना करना चाहिए। अगर एकादशी निर्जला कर सकते हैं तो बेस्ट, नहीं तो कम से कम फल फूल लेकर, अगर वो भी संभव नहीं है तो साबूदाना सब्जियां, कुछ कुछ सब्जियां। एकादशी को क्या क्या अवॉइड करना वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलो अभी बता ही देता हूं। तो अगर निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं तो ये सब जैसे साबूदाना वगैरह ले सकते हैं, लेकिन साबूदाना में क्या है, थोड़ा सा गंदगी रहती है, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और जो भगर, भगर पहले माना जाता था कि ले सकते हैं, लेकिन अभी इस्कॉन के जीवीसी ने रूल कर दिया कि भगर नहीं लेना, क्योंकि भगर जो मोरधन होता है, मोरधन या भगर जो बोलते हैं कुछ लोग, सामा चावल भी बोलते हैं उसको, वो भी ग्रेन में ही आता है, तो इसलिए एकादशी का दिन उसको ग्रहण नहीं करते। हाँ तिल भी नहीं खाना एकादशी में, सिर्फ एक एकादशी साल में आता है, उसका नाम है षट तिला एकादशी। षट तिला एकादशी साल में एक बार आता है, उस दिन तिल खा सकते हैं, बल्कि बाकी कोई एकादशी में तिल नहीं खाना। और नमक भी हम सेंधा नमक हाँ उपयोग करते हैं। और ये अपने छोंके में क्या कहते हैं, सिर्फ जीरा, जीरा सेंधा नमक और काली मिर्च यूज कर सकते हैं। हाँ और मिर्च अगर यूज करना है तो उसके बीजे निकाल कर यूज करना है। इस प्रकार से, और जो पिसे हुए जो मसाले होते हैं जैसे हल्दी वगैरह, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हल्दी वगैरह उसी चक्की में पीसते हैं जिसमें आटा भी पीसता है, तो आटा थोड़ा बहुत उसमें मिक्स हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। अगर अगर कच्चा हल्दी, मतलब हल्दी का जो वो होता है ना, हल्दी का जो पीस, उसको आप अलग से उसको घोट के अगर उसमें मिलाना चाहते हो तो वो चलेगा, लेकिन क्योंकि आटा मिक्स होने का डर है, इसलिए जो जो पाउडर किए हुए मसाले हम यूज नहीं करते। राई वगैरह नहीं चलेगा, राई सरसों और बीजे ये सब नहीं चलेगा, धनिया पत्ते चलेंगे। तो अगले दिन द्वादशी का दिन सही समय पर पारण करना जरूरी है। पारण यानी उसको व्रत को तोड़ना। और हाँ दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, शेविंग करना, ये एकादशी का दिन नहीं करना चाहिए। ये हो गया एकादशी। और एकादशी के दिन हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करने से हमारे भक्ति बहुत अच्छा प्रकट होते हैं। माधव दीदी भक्ति जननी बोलते हैं, भक्ति का जन्म होता है एकादशी के दिन, एकादशी या फेस्टिवल। और वैष्णव कैलेंडर में अपनी जगह के अनुसार समय लिखा रहता है कि द्वादशी में इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपको व्रत पारण करना है, उस समय पर आपको अन्न ग्रहण करना है, और अन्न भी प्रसाद लेकर उसको तोड़ना है समय समय पर। अब आते हैं चातुर्मास्य। चातुर्मास्य चातुर्मास्य होता है 4 महीने, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, 4 मास। पहला मास है आषाढ़, एक एक मास में एक एक चीज को अवॉइड करते हैं। ये चातुर्मास इसीलिए रखा गया क्योंकि पहले जमाने में, क्योंकि बारिश का मौसम होता है 4 मास, उस समय पर जो साधु संत हैं, जो भक्त हैं, वो ट्रैवल नहीं करते थे, एक ही जगह रहते थे, तो उस समय पर तपस्या करते थे। चातुर्मासी कहीं कुछ लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली भी करते हैं, पर प्रभुपाद जी ने सिर्फ सिंपल बताया हमको, पहले महीना यानी आषाढ़ महीने में शाक नहीं खाते, यानी जो पत्ते पत्ते वाला शाक होता है वो नहीं खाते, पालक वगैरह। और दूसरे मास में भाद्रपद मास में दही नहीं खाते, तीसरे मास में अश्विन मास में दूध नहीं लेते, और चौथा मास कार्तिक में उड़द दाल नहीं लेते। उड़द दाल नॉर्थ वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर साउथ वालों के लिए तो उनका खाना ही बंद हो जाता है, क्योंकि तो इडली डोसा जितना भी कुछ है तो उड़द दाल से ही बनता है। तो एनीवे तो ये हो गया 4 मास चातुर्मास। उसके बाद बस थोड़ा सा और हो गया ऑलमोस्ट हमारा, तो दो दो 3 मिनट और चर्चा करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, हाँ ये उपदेश अमृत ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें बता दे छोटा सा पुस्तक है उपदेश अमृत, आप सब पढ़िए, जरूर पढ़िए, उसमें भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या अनुकूल नहीं है, और 6 वेग कौन से, उसको कैसे दमन करना, भक्ति के लिए 6 चीजें भक्ति को खत्म करते हैं, यानी भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। वो 6 चीजें कौन से, हाँ अत्याहार, आवश्यक से ज्यादा खाना, आवश्यक से ज्यादा इकट्ठा संग्रह करना, और अति प्रयास करना, टू मच हार्डवर्क करना, ताकि आपको समय ही नहीं बच रहा है भक्ति और साधना करने का। हाँ बहुत देर देर रात तक काम करना पड़ रहा है, सुबह जल्दी जग नहीं पा रहे, हाँ इससे आपकी भक्ति और आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसके बाद प्रजल्प करना, बेकार की बातें करना, भगवान से संबंधित बातों को छोड़कर अन्य बातें करना, हाँ और नियमों का पालन ठीक से नहीं करना, या नियमों को अति अति करना, यानी टू मच, यानी भक्ति के उद्देश्य से नहीं बल्कि सिर्फ नियम ही नियम को ही सर्वोच्च समझना, ये भी गलत है, क्योंकि भक्ति के लिए कभी कभी कोई कोई नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति, भक्ति के लिए नियम होते हैं, नियम के लिए भक्ति नहीं होती, ये जान। कभी कभी प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी ने कई ऐसी चीजें की है, जैसे समुन्दर पार नहीं करना संन्यास, प्रभुपाद जी ने पार किया प्रचार के लिए। तो इस प्रकार से नियम जो है ओवर फैनेटिक नहीं होते, हम कभी कोई नियम पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर हम गुस्सा कर देते हैं, ए तू फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर हम उनको द्वेष करने लगे, नहीं हमें नियमों को ऐसा कड़ाई से बोलते हैं ताकि व्यक्ति सुनकर डर जाए और भाग जाए। तो इस तरह से नहीं, दया से, अगर कोई कोई चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर हमें क्रोध नहीं करना है बल्कि उनके ऊपर दया करना है, उनको मदद करना है, दया है मुख्य नियम। और किसी को कोई चीज करना नहीं आता, गलत कर रहा है तो उसको मतलब आप डांट देंगे, उसको गुस्सा करेंगे, उसके अंदर से आपके अंदर से उनके प्रति द्वेष या हीन भाव पैदा करेंगे, तो ये ज्यादा उससे भक्ति में नुकसान है। या नियम को इतना कड़ाई से करेंगे कि बाकी लोग परेशान हो रहे हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं करूंगा, ऐसा नहीं। तो ये हुआ। उसके बाद भौतिकतावादी व्यक्ति से संग करना, यानी असत संग, और लोभ लालच, ये चीजें भक्ति के लिए खतरनाक है। और छह चीजें जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उत्साह पूर्वक करना, उत्साह पूर्वक चैंटिंग करना, उत्साह पूर्वक हर चीज करना, और विश्वास रखना, धैर्य रखना, नियमों का पालन करना, श्रवण कीर्तन मंगल आरती चैंटिंग, ये सब नियमों का कड़ाई से पालन करना, भक्तों का नहीं अभक्तों का संग छोड़ना, और पूर्व आचार्यों के पदचिन्हों में चलना। ये चीज जो है, ये छह चीजें भक्ति के लिए अनुकूल है। और जो ब्राह्मण दीक्षा लिए हुए हैं उनको सही समय पर गायत्री मंत्र का जप करना, और उसके बारे में मैं उन लोगों के लिए अलग से एक सेमिनार लेने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गायत्री मंत्र का दीक्षा लिए हैं उनके लिए एक अलग सेमिनार करेंगे। और विग्रह की पूजा की प्रॉपरली सीखना, जिनको अच्छा से आता है उनसे अच्छे से सीखना, और हर चीज समय को कभी बर्बाद नहीं करना। हर हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कोई समय ना बीते दिन में जिसमें हमने भगवान को याद नहीं रख पाए। तो यह है। पंच तत्व मंत्र, गुरु प्रणाम मंत्र, ये सब भी करना जरूरी है, क्योंकि पंच तत्व मंत्र में हमें अपराधों से बच जाते हैं, क्योंकि पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद, उन्हीं की कृपा से हमको हरे भगवान का नाम मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, और उन्होंने ही हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार प्रसार किए हैं, उनकी कृपा से मिला। तो इसलिए उनकी कृपा से हम हरे कृष्ण मंत्र को अच्छे से जप कर पाएंगे, उनकी कृपा याचना करेंगे तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न, जल्दी प्रसन्न। ठीक है, 10 अपराध तो मैंने कहा कि वो आपको पढ़ना होगा, वो अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप सब याद कर लीजिए 10 अपराधों बस। और तो यहाँ आज हम विराम देते हैं, और कल आखिरी दिन है इस सेमिनार का, और कल हम चर्चा करेंगे वैष्णवों से कैसे डील करना, अलग अलग श्रेणी के वैष्णवों से कैसे डील करना, दूसरे संप्रदायों से कैसे डील करना, फैमिली से, फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे डील करना, ये सब चीज वैष्णव सदाचार में देखेंगे। लेकिन आज खत्म करने से पहले एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो भी गृहस्थ हैं, जो भी वर्किंग पीपल हैं, जो जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको ये बहुत जरूरी है कि ऐसे जॉब प्रोफेशन को करें जिसमें बहुत लेट नाइट तक काम नहीं करना, क्योंकि लेट नाइट जो भी काम होता है तो उससे आपका मॉर्निंग प्रोग्राम का तो खराब होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जग नहीं पाते, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप माला नहीं कर पाएंगे, तो उससे आपका मैक्सिमम, मैं कहता हूं कि 90% जो भक्ति है वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है, और वो अर्ली मॉर्निंग का अगर समय खराब हो गया तो फिर आपका मतलब भक्ति में प्रगति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कोई भी ऐसा जॉब है, ऐसा बिजनेस करिए जिससे आपको लेट नाइट तक करना पड़ेगा, और ताकि आप सुबह जल्दी नहीं जग सके। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट नियम है सुबह जल्दी जग, उसके बिना भक्ति बहुत मुश्किल है। तो आप अपने जॉब, अपने करियर इस तरह से चुनिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सके, और ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके, ज्यादा से ज्यादा समय मिले प्रचार करने के लिए, और उस स्थान पर आपको करना है जहां पर आप वैष्णव का संग और गुरु का मार्गदर्शन, उनकी सेवा करने का मौका मिले, प्रचार करने का मौका मिले, संग मिले। ये हुआ साधना के बारे में हमने चर्चा किया, तो उसमें मंगल आरती जो करते हैं, अच्छा उसके बारे में नहीं बता पाए। मंगल आरती बहुत जरूरी है, घर पे हैं तो घर पे भी कर सकते हैं मंगल आरती, सुबह सुबह जगते से सबसे पहले 4:30 बजे होता है या 5 बजे होता है। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई लेट कर दिया तो 5:30 या लेटेस्ट 6 बजे भी मंगल आरती नहीं करते हैं, उससे पहले ही करते हैं। हाँ, बट लेकिन आइडियली 4 साढ़े 4 5 6 साढ़े 5 तक कर देना चाहिए, और पहले कर लें तो और अच्छा। सो मंगल आरती का मतलब है भगवान को जगा रहे, और गुरु अष्टकम गुरु को याद करते हुए भगवान को सुबह सुबह कीर्तन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आरती है दिन। तो कभी दूसरा कोई सेमिनार लेंगे जिसमें हम गुरु अष्टकम का जो मीनिंग है, गुरु पूजा का जो मीनिंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे कभी दूसरे सेमिनार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली सुबह क्लास सुनना, साधना में ये आता है, क्लास सुनना, मंगल आरती करना, जप करना, क्लास सुनना, ये 3 चीजें मॉर्निंग प्रोग्राम में एब्सोल्युटली एसेंशियल। और जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए गुरु पूजा करना भी होती है। हाँ, जो मंदिर में रहते हैं, मंगल आरती, चैंटिंग, गुरु पूजा और क्लास, 4 चीजें। और जो घर पे रहते हैं, हाँ, कम से कम 3 चीजें करना, मंगल आरती, जपा और क्लास, डेली मॉर्निंग प्रोग्राम में ये चीजें बहुत जरूरी है, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास भी करते हैं तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अब मैं यहाँ विराम देता हूँ, किसी को अगर कोई प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं। अब मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो जिनको प्रश्न पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी ने पूछा हेड वॉश कर सकते हैं क्या एकादशी पर? एकादशी पर हेड वॉश क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम तो डेली करते हेड वॉश। और कोई प्रश्न है किसी को? नितिन यादव कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। हाँ,
जी,
हरे कृष्णा बोलो।
कभी परिवार में मतलब कमी हो चुकी है तो सुबह मंदिर आ सकते हैं?
मंदिर आ जरूर सकते हैं,
हाँ
लेकिन वहां किसी को टच नहीं करना है, थोड़ा सा अलग रहना, माला कर सकते हैं मंदिर में बैठ के, माला
फिर अभी
कर सकते हैं, लिखते सुन सकते हैं उसमें पेपर, लेकिन कोई चीज
फिर
भगवान को, भगवान की सामग्री को टच नहीं करना है। अच्छा, यश शर्मा का एक प्रश्न आया है, उन्होंने शिक्षा शिक्षकों के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि कि भगवान ने अपने नाम में सभी शक्तियां इन्वेस्ट की है, तो नाम तो कृष्ण से अभिन्न है, तो शक्तियां इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि भगवान भगवान के पास सारी शक्तियां हमेशा रहते हैं, नो डाउट, बट वो हमें शक्तियां कितना प्रकट करते हैं वो डिफरेंट रहता है, लेकिन नाम में भगवान ने सारी शक्तियां प्रकट की, उनकी सारी शक्ति से भगवान आपको उद्धार करने के लिए तैयार है। आप कोई खरबपति अरबपति है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन वो लिक्विड थोड़ी है, मतलब वो तो प्रॉपर्टी के रूप में कहीं रहे फंसा हुआ है, निकाल थोड़ी सकते हैं। अभी 1-10 करोड़ निकालो तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते है, लेकिन वो कहीं फंसा हुआ है। एक रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऑफकोर्स भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान की शक्तियां हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन भगवान वो सारी शक्तियों को एक्टिवेट कर रहे हैं नाम में, कि भाई इस व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, मतलब तैयार रखे। जैसे सेना है, राजा के पास सेना है, लेकिन सेना हमेशा तैयार नहीं रहती, लेकिन जब युद्ध का समय हो तैयार, सावधान, सब तैयार करके रख देते हैं, बस कभी भी अटैक। उसी प्रकार से भगवान ने उनके सारी शक्तियां हमेशा रहते हैं उनके साथ, लेकिन नाम में उस शक्तियों को एक्टिवेट करके रखा है, कि भाई जो भी नाम लेता है उसका उद्धार करो, उसके सारे पाप को मिटा दो, और उसको प्रेम प्रदान करो, उसका उद्धार करो, उसका कल्याण करो। तो नाम सारी नाम नाम के साथ सारी शक्तियां भी तैयार है, हमें उद्धार करने के लिए, यानी राधा रानी उनकी सारी शक्तियां बस वेट ही कर रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे बस। लेकिन हमें ध्यान पूर्वक शरणागति के साथ नाम का आश्रय लेना, बस इतनी देर, पर नाम सारी शक्तियों के साथ बैठे हुए हैं। शक्तियां हैं हमेशा, लेकिन शक्तियों को तैयार करके रखे हैं, उनको आदेश दिया हुआ है भाई इसका उद्धार करो, ये है इसका मतलब। एक्टिवेटेड है सब, स्पेशल आदेश है भगवान का, सारी शक्तियां इसको, जो नाम लेता है उसका उद्धार होता है ये। इसलिए यमराज भी जो नाम लेते हैं उनके पास नहीं जा सकते, यमदूत जो नाम लेते हैं उनको सारी देवताएं भी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, ये नाम लेते हैं भैया इसको हम कुछ छेड़ नहीं सकते, सबको सावधान करके रखा है, जो नाम लेता है उनको उनको मदद करना। भगवान की सारी शक्तियां भी जो नाम लेते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, ये है इसका। ठीक है, सावित्री माता जी पूछ रहे हैं विग्रह लाए भी बिना विग्रह लाए भी मंगला आरती कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, फोटो भगवान का फोटो भी भगवान से अभिन्न होता है, भगवान का फोटो रखिए, विग्रह लाना जरूरी नहीं है, सिर्फ फोटो के साथ भी कर सकते हैं। मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ विग्रहों को रात लाना, काफी समय तक जो काफी सिंसियर हो जाते हैं उन्हीं को विग्रह लाने को बोलते हैं, जनरली फोटो से ही आप कर सकते हैं, उनकी सेवा करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा तो आप श्रवण कीर्तन और प्रचार में ज्यादा समय दे सकते हैं, ये विग्रह की सेवा में बहुत समय चले जाता है, फिर आपको प्रचार करने में बाकी चीजों में टाइम कम मिल पाता है, इसलिए फोटो रखना और बेटर है। रुचिरा मंदिर भाई,
ठीक
डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली विदाउट नोइंग इम्पोर्टेंस, क्यों सुबह उठना क्यों लेट है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि लेट सोते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपको समझता है कि उसके बिना भी भक्ति चल जाएगी, आप समझ लो उसके बिना भक्ति होगा नहीं, भूल जाओ, फॉरगेट इट, आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे, तैयार हो तो कोई बात नहीं, आप लेट सो जाओ, लेट जगो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस ये इतना मान के चलो कृष्ण नहीं मिलेंगे, अगर उसको इंपॉर्टेंस समझते हैं तो जल्दी सोना है उसके लिए, अपने जो भी करना है उसके लिए वी शुड बी विलिंग टू डू दैट, जो भी चेंजेस लाना अपने लाइफ में, स्केड्यूल में, जॉब में, भक्तों का हेल्प लेना। ओके, और स्कूल जाना होता है और बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन होता है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, उनसे कैसे अवॉइड करें, सिर्फ काम का बात करो, पढ़ाई का बात कर लिए बस, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करो, और फील नहीं करना कि अरे उनके संग नहीं मिला तो हमें कुछ लॉस हो गया, ऐसा नहीं सोचना, कोई बात नहीं, उनका संग नहीं मिला तो हमको भक्तों का संग है बस, ये काफी। हाँ कोई जरूरी बात है पढ़ाई से रिलेटेड कोई ऐसे इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको द्वेष करते हैं या उनको सम्मान नहीं करते, ऐसा नहीं, सम्मान करते हैं और जरूरी बात करते हैं, लेकिन बहुत ओवरली मिंगल नहीं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो सब चैट में ही डाल रहे हैं, पूछ क्यों नहीं रहे, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, बेटर है। यस शशिम की माता जी हैंड रेस कर।
हरे कृष्णा प्रभु जी, रनरत्ना, मैं 2 मिनट में आ रही। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैं लेक्चर तो पूरा नहीं सुन पाई, बट आई जस्ट जॉइंड टुवर्ड्स द एंड। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, अभी जैसे आपने लास्ट लाइन बताया कि हमको ऐसा जॉब चूज करना चाहिए जो ज्यादा लेट तक ना रहे, ऑफ कोर्स आई हैव अ जॉब विच रन्स टिल मिडनाइट, सो प्रभु जी उसमें मतलब ऐसा है कि बट प्रभु जी इट इज लाइक कि ओनली द वन बैड फैक्टर
इज अबाउट भक्ति,
यस, लेकिन प्रभु जी जैसे व्हाट इट हैज इज कि बाकी सारे फैक्टर्स लाइक प्रीचिंग हो गया या सैटरडे संडे फिक्स ऑफ हो गया, इवन फाइनेंशियली और एवरीथिंग, इट्स वेरी गुड, मतलब वर्कलोड भी इतना ज्यादा नहीं है या काम के बाद कुछ ऐसा नहीं रहता. द ओनली वन फैक्टर इज दैट इट इज स्टिल मिडनाइट. सो लाइक हाउ शुड आई टेक इट?
बस समझ लीजिए कि भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे.
नो प्रभु जी, दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट अफोर्ड.
बाकी सब अच्छा है ना, भगवान की क्या जरूरत.
नहीं नहीं,
I'm telling you clearly, if you can't wake up early in morning before at Brahma Muhurta time, then forget it. इसके बाद भी आप प्रश्न पूछ रहे
हैं? नहीं प्रभु जी, I mean like I do wake up early in morning. मतलब जल्दी सुबह उठ के chanting and everything I do. उससे of course मेरा sleep disturbed रहता है every time, every day.
ध्यानपूर्वक नहीं कर पाएंगे ना, ध्यानपूर्वक नहीं कर पाएंगे. Distraction रहता है, your body is not rest, well rested. So how can you chant patently? You have to look for a different job. I mean, हो सकता है आज ही कल ही नहीं हो पाए, थोड़ा सा as soon as possible you should try. तो फिर आपका sleep cycle disturb होगा, health disturb होगा, chanting कर भी ले वो जबरदस्ती तो भी मतलब उसमें properly हो नहीं पाएगा, morning classes attend नहीं कर पाएंगे.
Yes, Prabhuji, understood. Thank you so much.
Yeah, yes. Compromise करेंगे तो ठीक है, भक्ति भी ऐसे ही रहे. We should be very strict in our. अभी फिलहाल ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कल ही इसको छोड़ दो, आज ही छोड़ दो. थोड़ा सा आप alternative ढूंढ लीजिए, बस ये बोल रहा हूँ. Find, try to find. Where you can wake up early and wake up early.
Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for guiding. Hare Krishna, Dandavatam.
Anchal Prabhu, ये आपको भी apply करता है. सुन रहे हैं ना?
हाँ Prabhuji.
जब तक आप late night वाला काम नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप सुबह जल्दी नहीं जग पाएंगे. और जब तक सुबह जल्दी नहीं जग पाएंगे, आपकी भक्ति में प्रगति करना नामुमकिन है. ये आपको समझना होगा कभी ना कभी. नहीं तो फिर वो आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कृष्ण से भी मेरे जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी ये वाली जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट. ऐसा कृष्ण से भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता. अगर बस मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये सत्य है.
तो जी हम तो अभी है इस वर्ल्ड में, हमारा होने वाला है, शेड्यूल हो जाएगा जल्दी से जल्दी.
हाँ तो ये सत्य कह रहा हूँ, भले आपको कड़वा लगे, लेकिन अगर आपको सच जानना है तो सच यही है कि जो लेट जगते हैं वो सुबह जल्दी नहीं जग पाएंगे. मतलब लेट तक जगते हैं तो सुबह जल्दी नहीं जग पाएंगे, उससे ब्रह्म मुहूर्त या अर्ली मॉर्निंग वाला डिस्टर्ब होगा, तो बाकी सब डिस्टर्ब होगा. तो 90 मैंने बोला ना, 90% आपकी भक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम से जुड़ा, वही खत्म हो गया तो फिर क्या बचा है. प्रभुपाद जी ने बहुत एम्फसाइज किया इसको, अगर उसको हम नहीं करते हैं फॉलो तो मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम भगवत धाम जाएंगे. सभी के लिए सावित्री माता जी, यस बोलिए.
हरे कृष्णा प्रभु जी.
जी
प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, आपने जैसे कहा कि वैष्णव लोग सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करते हैं, तो प्रभु जी मेरे घर में मैं ही वैष्णव हूँ और बच्चे वगैरह ये लोग जैसे भैयू है बेटा वो हनुमान जी को मानता है. मतलब मेरे कहने का प्रश्न ये है कि सिर्फ मैं यदि कृष्ण को मानती हूँ और बाकी देवताओं को ये बच्चे वगैरह जो भी परिवार में है वो मानते हैं, तो जैसे कुलदेवी की पूजा होती है, भैरू जी की पूजा होती है, जो मतलब शुरू से करते आ रहे हैं पूरे परिवार में, तो प्रभु जी फिर मैं यदि इनको नहीं सिखाऊंगी, जैसे मेरे परिवार में बड़ा कोई नहीं है, मैं हूँ जो, यदि मेरे बेटे की बहू आती है तो उसको मुझे ही बताना है कि कुलदेवी की पूजा वगैरह कैसे करनी, क्या करना है, यदि वो वैष्णव ना है तो फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगी प्रभु जी? यदि मैं इन चीजों को कंटिन्यू रखूंगी तो मैं तो भूल जाऊंगी उन चीजों को.
देखिए जब परिवार में रहते हैं तो सबको अपना अपना स्पेस देना पड़ता है, हम थोप नहीं सकते हैं सबके ऊपर कि यही करना. हाँ अगर वो भी सुनते हैं, सीखते हैं आपसे और आप बोलने से सुनते हैं या सुनने को तैयार हैं तो बता सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर नहीं सुनना चाहते क्या कर सकते, ऐसी स्थिति में आप अपना ऑल्टर अलग रख लीजिए और उनका ऑल्टर अलग रखिए, या कृष्ण के नीचे देवी देवताओं को रखिए, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। और आप ज्यादा ध्यान दीजिए चैंटिंग, हियरिंग और सेवा और पीचिंग, वो तो कोई रुक नहीं सकता। और इसलिए मैं जनरली हेजिटेट करता हूं कि किसी के डिवोटीज विग्रह रखने से, क्योंकि विग्रह रखने में एक तो ये समस्या है और दूसरी समस्या ये भी है कि घंटे घंटे उसी में जाता है, और जो मेन पर्पज है इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का, वो नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ उसी में टाइम देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद विल, प्रभुपाद नहीं चाहते थे ऐसा। हाँ, प्रचार भी करें, डेटी वर्षिप भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रचार ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसलिए अगर परिवार में दूसरे लोग हैं तो ठीक है, तो भी करने दे, कम से कम हम कौन होते हैं उन सबको थोपने वाले, उनके हिसाब से भगवान ने जो सबको फ्रीडम दिया है कि क्या करना है करना चाहिए। इसलिए दो ऑप्शन है, या तो भगवान के नीचे देवताओं को रखे, या उनका ऑल्टर अलग रखे, अपना ऑल्टर अलग रखे, और उनको समझा कर देखिए, अगर वो समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है
जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक प्रश्न होता ही है कि अभी जैसे ये मतलब कि मेरे परिवार में जैसे मेरे मौसी है, भुआ है या मम्मी वगैरह, मम्मी है, ये सब क्या शिव जी का भी जो प्रदीप निष्ठा का चल रहा है इसको करने के लिए मुझे बहुत प्रेशर करते हैं कि अभी जो मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, बोले ये तू कर, तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं करती, मैं भैयों के द्वारा करवा देती, बेटे के द्वारा, लेकिन वो बार बार बोलते हैं इस सब कसे करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा ये भी कर, भगवान तो सब एक है, भोलेनाथ का कर, इनका कर, उनका कर, लेकिन फिर क्या बार बार प्रेशर करते हैं, फिर मैं उनको एक ही चीज बार बार बोलती हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ, तो फिर वो बोलते हैं वह तेरे मन की कर, तेरा कुछ सही नहीं हो रहा था, ऐसा बोलते हैं।
तो उसके लिए मैं क्या करूँ, आपको तय करना होगा क्या प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहते हैं कि उनको फॉलो करना चाहते हैं।
नहीं प्रभु जी, मैं तो प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहता हूँ।
तो वो लोग क्या कहते हैं उससे हमें क्या लेना है, हम लोग अपने अपने बातें कहें।
ठीक है प्रभु,
बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमें क्या फॉलो करना है, वी लर्न प्रभुपाद। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जितेंद्र।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने कल की क्लास में वो प्रसाद का एक रूल बताया था कि जब तक पहले खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं हो फिर से दूसरा प्रसाद नहीं लेना चाहिए, तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं कि मतलब कुछ टाइम का गैप रहता है, उतने टाइम बाद ही खाना चाहिए? सब कुछ
आपको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा ठीक से, दैट्स ऑल आई कैन से। अच्छा, एक और कोई क्वेश्चन था और किसी ने हैंड रेस किया? हाँ यश, यस यश प्रभु।
हरे कृष्ण गुरु जी।
हाँ बोलो जी।
थैंक यू सो मच। मेरी मम्मी चाहती हैं कि वो घर पे लड्डू गोपाल जी को लेके आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है पूछना कि उनका वर्शिप कैसे होता है, और अगर अपन कर पाते हैं तो अपन उन्हें घर पे लेके आएंगे।
उनको अगर वो डिवोटी डिवोटी है या डिवोटी बनना चाहते हैं तो उनको समझाइए कि इस्कॉन में हम लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं वल्लभ संप्रदाय वाले, क्योंकि उनके टीचिंग्स उस प्रकार से वात्सल्य रस। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स है वो या तो गौर निताय, या तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, या तो राधा कृष्ण। दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज रिकमेंडेड, तो उनको समझाना पड़ेगा।
जी, प्रभु जी, थैंक
हाँ अपने
यू.
आचार्यों को फॉलो करना चाहिए।
यस.
और कोई सवाल आज के क्लास से संबंधित, आज के विषय से संबंधित? घर में पहले से लड्डू गोपाल है, घर में पहले से लड्डू गोपाल है तो उनकी सेवा करिए। और बाद में जब आप मेन डेटिस को लाएंगे तो तब इन डेटिस को किसी और को दे सकते हैं, ऐसा कर सकते, ठीक है? थैंक यू। अंकित नीलकंठ, आप कहाँ से हैं अंकित जी? धार से? अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। धार से और कोई है?
नहीं प्रभु जी, मुझे जानकारी नहीं इस बात में।
वेरी गुड, ठीक है, हम यहाँ एंड करते। थैंक यू श्री प्रभुपाद की जय और प्रेमा।